नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी भी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति उसके समुद्री सामर्थ्य पर काफी हद तक निर्भर करती है, इसलिए भारत अपनी समुद्री क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर स्वदेश निर्मित 3 युद्धपोतों को भारतीय नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने ये बात कही। इनमें अत्याधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट INS दूनागिरी, संशोधक और अग्रय शामिल हैं।
भारत अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्व भर के लोगों का आभार व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये देखकर खुशी होती है कि योग सभी क्षेत्रों और विभिन्न देशों के लोगों को स्वस्थ जीवन तथा कल्याण की साझा खोज में एकजुट कर रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि योग दिवस आने वाले समय में अधिक लोगों को दैनिक जीवन में योग अपनाने के लिए प्रेरित करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के श्योपुर स्थित कूनो राष्ट्रीय उद्यान का दौरा करेंगी। वे चीता पुनर्स्थापन परियोजना की प्रगति की समीक्षा करेंगी और चीतों की देखभाल करने वाले वनकर्मियों तथा स्थानीय लोगों से बातचीत करेंगी। राष्ट्रपति ने कल चीता कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा किया। इस दौरान अधिकारियों ने उन्हें बताया कि इस समय देश में 52 चीते हैं, जिनमें 49 कूनो राष्ट्रीय उद्यान में हैं। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की 2 दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों तथा अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवादी रोधी सहयोग और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग से जुड़े मुद्दों पर की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भाग लेंगे। चीन के विदेश मंत्री वांग यी भी इसमें शामिल होंगे। नीट यूजी पुनर्परीक्षा कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच सम्पन्न हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया कि देश भर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 20 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। ये परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी सहित 13 भाषाओं में आयोजित की गई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 12वीं के अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के परिणाम जारी करने शुरू कर दिए हैं। बोर्ड के अनुसार 87% से अधिक आवेदनों के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं, जबकि शेष परिणाम जल्द ही जारी किए जाएंगे। तमिलनाडु के पेरियापालियम स्थित सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने घटना की उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया। मैनचेस्टर में ग्रुप ए मुकाबले में भारत के 159 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने 5 गेंद शेष रहते 4 विकेट पर 161 रन बना लिए। दक्षिण अफ्रीका की मारिजान केप ने नाबाद 81 रन की शानदार पारी खेली और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप जी के मुकाबले में ईरान और बेल्जियम के बीच मैच बिना किसी गोल के ड्रॉ रहा। वहीं ग्रुप एच में स्पेन ने सऊदी अरब को 4-0 से हराकर अगले दौर में जगह बनाई। आज ग्रुप एच में उरुग्वे और केप वर्डे के बीच मुकाबला 2-2 गोल से बराबर रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।